पृष्ठ 59, 4, रंगमंच और हिंदी नाट्य साहित्य। यद्यपि सब नाटक खेले जाने के लिए ही नहीं लिखे जाते, क्योंकि बहुत से नाटक नाम की रचनाएं रंगमंच की वस्तु न होकर कच्छस्थ मंचिका अर्थात कुर्सी पर बैठे हुए पाठकों के हाथ की शोभा बढ़ाती है, तथापि उसके अभिनय होने से ही उनकी पूर्ण सार्थकता है। हिंदी का स्वतंत्र रंगमंच न होने के कारण नाटककार अपनी रचनाओं के अभिनयत्व पर ध्यान नहीं देते, किंतु यह उनकी अपूर्णता ही कही जाएगी। हर्ष की बात है कि आधुनिक नाटककार इस बात का अधिक ध्यान रखते हैं। भरत मुनि लिखते हैं कि मंडपे विप्रकृष्टे तु पाठ्य मुच्चरितम स्वरम अभिव्यक्त वर्ण त्वाद विस्वरत्व भृशम भवेत् प्रेक्षागृहाणम सर्वेषां तस्मान् मध्य ममिष्यते यस्माद्वाद्यं च गेयं च सुख्य श्राव्यतरं भवेत्। नाट्यशास्त्र अर्थात बड़े नाट्य मंडल में जो पढ़ाया उच्चारित होगा वह वर्णों के स्पष्ट न होने के कारण अत्यंत बेसुरा हो जाएगा। इसलिए सब प्रकार के नाट्य घरों में मध्यम ही श्रेष्ठ है, क्योंकि इसमें गाना बजाना सब ठीक रूप से दिखाई पड़ता है। इससे प्रतीत होता है कि हमारे पूर्वज नाट्य गृह के विस्तार की अपेक्षा उसके श्रवणीय तत्वों पर अधिक ध्यान रखते थे। इससे यह ज्ञात होता है कि हमारे यहाँ के लोगों ने यूनान के विस्तृत नाट्य घरों का अनुकरण नहीं किया। हमारे लोग पात्रों की भावभंगी का अधिक ध्यान रखते हैं, अपने यहाँ इसलिए मुखौटों का प्रयोग नहीं करते थे। यूनान की विस्तृत नाट्य शैलियों के ही कारण वहाँ मुखौटों और ऊंची एड़ी के जूतों की आवश्यकता होती थी। भावभंगी का पूरा ध्यान छोटे ही नाट्य गृह में रखा जा सकता है। संस्कृत नाटक प्राय अभिनय योग्य होते थे। कुछ लोगों का विचार है कि उत्तर रामचरित जैसे क्लिष्ट नाटक श्रव्य अधिक थे, किंतु उनकी प्रस्तावना से तो यही प्रतीत होता है कि वे खेले जाने के लिए ही लिखे गए थे। पृष्ठ 60। नाट्यशालाओं के प्रकार। नाट्यशाला में अभिनय और रंगमंच का पूरा पूरा ध्यान रखा जाता था। भरत मुनि ने तीन प्रकार के नाट्यशालाओं का उल्लेख किया है। चतुरस्न, जिनकी लंबाई चौड़ाई बराबर होती थी अर्थात 108 हाथ का ज्येष्ठ, 64 हाथ का मध्यम, 32 हाथ का कनिष्ठ। विकृष्ट, जिनकी लंबाई चौड़ाई से दूनी होती थी, इनके भी तीन भेद होते हैं। ज्येष्ठ की लंबाई 108 हाथ, मध्यम की लंबाई 64 हाथ और कनिष्ठ की लंबाई 32 हाथ होती है। एक हाथ 24 अंगुली का बतलाया गया है। प्रयत्न, यह त्रिकोण के आकार का होता था, विकृष्ट ही अधिक अच्छा माना जाता था। चतुरस्न देवताओं के लिए होते थे, विकृष्ट मनुष्यों के लिए और प्रयत्न घरेलू सीमित दर्शकों के लिए। राजाओं के लिए मध्यम का विधान किया गया है, क्योंकि 108 हाथ वाले में आवाज स्पष्ट नहीं सुनाई पड़ती है। मध्यम के लिए इससे बड़े मंडप का निषेध है, क्योंकि बड़ा बनाने से नाटक का भाव दिखाई या सुनाई न पड़ेगा। रेखाचित्र, यहाँ पर हम एक विशिष्ट रंगमंच के विभाग देकर यह उस समय की नाट्यशाला का दिग्दर्शन करा देना चाहते हैं। नाट्यशाला के भाग। नाट्यशाला के दो संभाग रहते थे, पीछे का क भाग अभिनय के लिए और आगे का ख भाग दर्शकों के लिए। पिछले भाग के दो और भाग रहते थे। सबसे पिछले भाग का नेपथ्य गृह कहते थे। इसमें नट लोग अपनी वेशभूषा सजाते थे और यदि कोई कोलाहल या और कोई जनरव सुनाना होता था तो इसी में से सुनाया जाता था। पुराने नाटकों में ऐसा संकेत रहता था, नेपथ्य या नेपथ्य में। नेपथ्य गृह के आगे के भी दो भाग रहते थे। नेपथ्य गृह से मिले हुए भाग को रंगशेष और उसके अग्र भाग को रंगपीठ कहते थे। रंगशेष और रंगपीठ के बीच में जवनिका रहती थी। रंगशेष में नाना प्रकार की चित्रकारी दिखाई देती थी, संभवतः और पर्दे भी रहते थे। उसमें जो लकड़ी के खंभे आदि रहते थे उन पर सुंदर नक्काशी का काम रहता था। नीचे की भूमि चिकनी होती थी। रंगपीठ के से चार हाथ दूरी पर प्रेक्षक गण बैठते थे। रंगशेष में ही प्रारंभिक पूजा आदि होती थी। असली अभिनय रंगशेष में ही दिखाया जाता था। रंगपीठ में तो ऐसे ऊपरी कृत्य होते थे जो शायद पृष्ठ 61 रेखाचित्र पृष्ठ 62 दृश्य बदलने के समय होते हों। इसमें नाच आदि भी हुआ करता था। सूत्रधार भी अपनी प्रारंभिक सूचना यहीं से देते थे। रंगपीठ के दोनों ओर कुछ ऊंचाई पर अंबारी की तरह किसी रोकदार चीज रहती थी जिसे मतवारिणी कहते थे। आगे के ख भाग में जो दर्शकों के लिए होता था सोपानाकार बैठ के, जो आजकल की गैलरियों से मिलती जुलती होंगी होती थी। ये बैठकें भिन्न भिन्न वर्ण के लोगों के लिए अलग अलग होती थी। इन बैठकों के बीच स्थित खम्भों के रंग से यह निश्चित हो जाता था कि वे किस वर्ण के लोगों के लिए हैं। नेपथ्य गृह और रंगशेष के बीच में जो द्वार होते थे इनमें से ही निश्चित नियमों के अनुसार अभिनेता आया जाया करते थे। इन सब चीजों के अतिरिक्त बांसों या कपड़े या चमड़े का और भी सम्मान रहता था जिससे घोड़े रथ आदि दिखाए जा सके। अट्टालिका आदि दो मंजिले रंगमंच द्वारा दिखाई जाती थी। इसको रंग मंडप कहते थे। स्वर्ग के लोग भी उसी में दिखाए जाते थे। गाना बजाना भी वहीं से होता था। इसको गुफा के आकार का सा बनाया जाता था जिससे आवाज गूंजे। कार्यशैल गुहाकारों द्विभूमि नाट्य मंडप नाट्यशास्त्र रेखाचित्र पृष्ठ 63 नाटक और अभिनय यत्व। नाटकों के लिए अभिनय योग्य होना क्या आवश्यक है, यह प्रश्न कुछ विवादग्रस्त होता जाता है। वैसे तो नाटक रूपक आदि शब्द अभिनय से ही संबंध रखते हैं और इससे प्रतीत होता है कि नाटक मूल रूप से अभिनय के लिए ही लिखे जाते थे। नट या अभिनेता से संबंध रखने वाली वस्तु नाटक कहलाती है, किंतु कालांतर में नाटक कथानक और शैली के लिए लिखे जाने ही लगे। यद्यपि नाटक की पूर्णता अभिनय में ही है और अभिनय योग्य नाटकों में रंगमंच की आवश्यकताओं और प्रभाव का ध्यान रखा जाता है, तथापि अभिनयत्व के अभाव के कारण किसी नाटक को हम हेय नहीं ठहरा सकते हैं। केवल पढ़े जाने वाले नाटकों को अंग्रेजी में अर्थात कक्ष नाटक कहते हैं। जो लोग इस प्रकार के नाटक लिखते हैं उनका कथन है कि कलाकार स्वांत सुखाए लिखता है और उसके लिए रंगमंच का प्रश्न इतना ही गौड़ है जितना कि पैसे का। इसका दूसरा पक्ष भी है, अनुकरण नाटक की जान है। यही उसको साहित्य की अन्य विधाओं से पृथक करती है। अनुकरणकर्ताओं और दर्शकों की सुविधा के अनुकूल उसका संगठन होता है। इस संबंध में हम केवल इतना ही कहेंगे कि नाटक के मूल उद्देश्य में तो अभिनयत्व आवश्यक है, किंतु अच्छे साहित्यिक शैली अभिनयत्व की कमी को किसी अंश में पूरा कर देती है और गीत शब्दावली आदि कल्पना के सहारे उचित वातावरण और दृश्य विधान को उपस्थित कर देती है। यद्यपि उसमें अभिनय की सी सजीवता नहीं होती है, तथापि साहित्यिक नाटकों में गौरव और शालीनता बढ़ जाती है। इस प्रकार के नाटकों को हम दृश्य और श्रव्य काव्य के बीच की वस्तु कहेंगे। अभिनयत्व भी एक सापेक्ष शब्द है। जो नाटक साधारण रंगमंच और दर्शकों के लिए अभिनय योग्य न समझा जाए वह एक विदग्ध समाज के समाज में अभिनय हो सकता है। कुछ लोग रंगमंच के योग्य नाटकों और साहित्यिक नाटकों का पार्थक्य करते हैं। साहित्यिक नाटक रंगमंच के योग्य नहीं हो सकते और रंगमंच के योग्य नाटक साहित्यिक नहीं हो सकते, जैसे बेताब या राधे श्याम के नाटक, किंतु यह बात सर्वथा ठीक नहीं है। दोनों गुणों का सुखद समन्वय किया जा सकता है। इसके लिए रंगमंच के उत्थान की भी आवश्यकता है। हिंदी रंगमंच। हिंदी नाटकों के अभिनय के संबंध में यहाँ दो एक शब्द कह देना अनुपयुक्त न होगा। जब हिंदी नाटक लिखे जाने आरंभ हुए तब उर्दू का बोलबाला था। पारसी थिएट्रिकल कंपनियां व्यवसायिक ढंग पर चल रही थी। जनता की रुचि परिमार्जित न थी। बदलते हुए रंग बिरंगे पर्दे, चमकीली भड़कीली पोशाकों तथा एक खास ढंग के गानों को सुनकर वे लोग मुग्ध हो जाते थे। वे लोग अधिकतर इंद्रसभा, गुलाब कावली जैसे नाटक खेलते थे। वे लोग कभी हिंदी नाटक खेलने का साहस करते तो वे न हिंदी शब्दों का शुद्ध उच्चारण कर सकते थे और न उन नायकों के अनुकूल वातावरण ही जुटा सकते थे। भगवान कृष्ण को बिरजिम अर्थात ब्रिजेस पहनाकर पृष्ठ 64 खड़ा कर देते थे। पोशाकों में वे देशकाल का ख्याल नहीं करते थे। यह ऐसा ही हास्यपद हो जाता था, जैसा कि भगवान रामचंद्र की सवारी को आजकल भी रोल्स रॉयस मोटर में चित्रित कर हनुमान जी को ड्राइवर बना देना और फिर अपनी सूझबूझ पर दाद चाहना। पारसी नाटक मंडलियों का प्रभाव व्यापक हो चला था और जो और नाटक मंडलियां बनती थी वे भी उनका आदर्श लेकर चलती थी। बंगाल भी उनके प्रभाव से न बचा, किंतु वहां वह प्रभाव कुछ न्यून रूप में रहा। दक्षिण में प्राचीन भारतीय पद्धति कायम रही। भारतेंदु हरिश्चंद्र ने पारसी थिएट्रिकल कंपनियों द्वारा खेले हुए नाटकों का बड़ा हास्यप्रद चित्र खींचा है। देखिए, काशी में पारसी नाटक वालों ने नाच घर में शकुंतला नाटक खेला और उसमें धीरोदात्त, धीर ललित नायक दुष्यंत खेमटे वालियों की तरह कमर पर हाथ रखकर मटक मटक कर नाचने और पतरी कमर बलखाए या गाने लगा तो डॉक्टर थीबो बाबू प्रमदा दास मित्र प्रभृति विद्वान यह कहकर उठ आए कि अब देखा नहीं जाता। वे लोग कालिदास के गले पर छुरी फेर रहे हैं। भारतेंदु ग्रंथावली भाग एक। भारतेंदु जी भी अपने नाटकों का अभिनय करते थे। बलिया में उन्होंने बड़ी सफलता के साथ सत्य हरिश्चंद्र का अभिनय किया था। नाटकों में साहित्यिकता का तो विकास होता रहा, किंतु रंगमंच में कोई उन्नति नहीं हुई। हरिश्चंद्र के युग के आसपास हिंदी रंगमंच को अस्तित्व में लाने के प्रयत्न हुए। सन 1861 में पंडित शीतला प्रसाद त्रिपाठी का बनाया हुआ जानकी मंगल नाटक बनारस थिएटर्स में धूमधाम से खेला गया था। कानपुर में भी रणधीर प्रेम मोहिनी तथा सत्य हरिश्चंद्र का सफल अभिनय हुआ, किंतु ये प्रयत्न किसी स्थायी रंगशाला की स्थापना में और उसके विकास में सहायक न हो सके। फिर भी उद्योग जारी रहे। हिंदी का रंगमंच कुछ शिक्षित लोगों के व्यसन के रूप में अपना मरता गिरता अस्तित्व अवश्य रखता है, किंतु वह जन साधारण की वस्तु न बन सका। वास्तविक रंगमंच पारसी नाटक कंपनियों के हाथ में था और उसमें उर्दू का बोलबाला रहा। वे जनता का आकर्षण अवश्य कर सका, किंतु एक सजीव संस्था न हो पाई। श्री राधे श्याम जी का कथावाचक श्री बेताब जी आदि ने कुछ ऐसे नाटक जैसे वीर अभिमन्यु, महाभारत आदि अवश्य दिए जो उस प्रकार के रंगमंच की अनुकूलता प्राप्त कर सके। शायद उस परंपरा में विकास होता, किंतु सिनेमा के प्रादुर्भाव के साथ रंगमंच का पटाक्षेप सा हो गया। हिंदी नाटकों के अभिनय में व्याकुल जी की भारत नाटक मंडली ने सराहनीय योग दिया, किंतु वह अधिक दिन जीवित न रह सकी। यह भी एक स्फुट प्रयत्न ही था। हिंदी रंगमंच वैयक्तिक अथवा साहित्यिक संस्थाओं की वस्तु बना हुआ है। राजा रईसों के मनोविनोद के लिए यत्र तत्र निजी नाटक मंडलियां जीवित रहीं। स्थूल पृष्ठ 65। कॉलेजों और साहित्यिक उत्सव पर डीएल राय, प्रसाद, उग्र आदि के नाटकों का अभिनय हुआ। प्रसाद जी के नाटकों का थोड़ा बहुत काट छाट के साथ साहित्य सम्मेलन के वार्षिक अधिवेशन जैसे साहित्यिक समारोह पर प्रदर्शन हुआ। श्री माखनलाल चतुर्वेदी के कृष्णार्जुन युद्ध का भी सुंदर अभिनय हो चुका है। पंडित बद्रीनाथ भट्ट की चुंगी की उम्मीदवारी ने कुछ दिनों जनता का अच्छा मनोरंजन किया था। मथुरा में अब फिर भारतीय रंगमंच के पुनरुत्थान का प्रयोग हो रहा है। अब एकांकी नाटकों के प्रचलन से अभिनय कला को कुछ प्रोत्साहन मिला। एकांकियों के अभिनय में अपेक्षाकृत कम साज सामान की आवश्यकता होती है। श्री राम कुमार वर्मा के 18 जुलाई की शाम, श्री जगदीश चंद्र माथुर के भोर का तारा, कलिंग विजय आदि एकांकियों का अभिनय कॉलेजों में बड़ी सफलता पूर्वक हुआ। बड़े नाटकों का झुकाव भी संक्षिप्तता की ओर हो गया है और भाषा भी कुछ सरलता की ओर जा रही है। प्रसाद जी के नाटकों की अभिनेता में उनका विस्तार तो बाधक था ही, किंतु उनकी संस्कृत गर्भित दार्शनिकता प्रधान भाषा ने उनको जन साधारण की पहुंच से बाहर कर दिया। वास्तव में प्रसाद जी के नाटकों के लिए दर्शक और अभिनेता दोनों का ही सुसंस्कृत होना अपेक्षित है। उसी के अनुकूल रंगमंच और दर्शक चाहिए। भाषा की दुरुता के संबंध में प्रसाद जी का मत है कि अच्छे अभिनेताओं के हाथ में भाषा दुरू नहीं रह जाती, वह अभिनय की टीका के साथ सुबोध हो जाती है। अवाक चित्रपट तो बिना शब्दों के ही सुबोध होता है। यहाँ हम स्वयं प्रसाद जी का मत उद्धृत करते हैं। रंगमंच के संबंध में यह भारी भ्रम है कि नाटक रंगमंच के लिए लिखे जाएं। प्रयत्न तो यह होना चाहिए कि नाटक के लिए रंगमंच हो जो व्यवहारिक है। हाँ, रंगमंच पर सुशिक्षित और कुशल अभिनेता तथा मर्मा के सूत्रधार के सहयोग की आवश्यकता है। काव्य कला तथा अनुनिधन। प्रसाद जी ने हिंदी रंगमंच की असफलता का कारण यह भी बतलाया है कि हिंदी रंगमंच को स्त्रियों का सहयोग न मिल सका। प्राचीन कला में नटों के साथ नटनियां भी रहती थी और नट इतना अनादर का शब्द न था। इसके कारण स्त्री पात्रों का ठीक अभिनय नहीं हो पाता। उच्च वर्ग के लोगों में, विशेषकर संयुक्त प्रांत में, संगीत शास्त्र का आदर वैसा नहीं है जैसा कि होना चाहिए। इसी कारण हिंदी भाषा भाषी प्रांत में नाट्य कला का ह्रास हो रहा है। व्यापारिक दृष्टि से नाट्य कला में भाग लेना तो निंद है ही, किंतु इसमें शौकिया भाग लेने वाले भी कम रहे। बंगाल और गुजरात में ऐसा नहीं था, वहाँ इस कला की अपेक्षाकृत उन्नति भी रही। हिंदी रंगमंच का तभी उद्धार हो सकता है जब पंत निराला, उदय शंकर भट्ट, विष्णु प्रभाकर आदि इसके विकास में क्रियात्मक सहयोग दे और शिक्षित युवक और पृष्ठ 66 युवतियां अभिनय में भाग लें। साथ ही ऐसे नाटकों की सृष्टि की जाए जो तुकबंदी के बिना प्रवाहमय हो और जिनमें रंगमंच की आवश्यकताओं का ध्यान रखते हुए जीवन की स्वाभाविकता के साथ साहित्यिक सौष्ठव और शालीनता वर्तमान रहे। सिनेमा और रंगमंच। यहाँ पर दो एक शब्द सिनेमा के संबंध में कह देना अनुपयुक्त न होगा। जैसे ही हिंदी के संबंध में कुछ जागृति बढ़ी, वैसे ही सिनेमा का उदय हुआ। उसने जनता के मनोरंजन के लिए रंगमंच का स्थान ले लिया। सिनेमा में कुछ सुविधाएं अवश्य हैं जो नाटक में नहीं है। सिनेमा में चाहे कला कम हो, किंतु वातावरण में वास्तविकता अधिक लाई जा सकती है। स्टेज पर लड़ती हुई रेल, डूबते हुए जहाज या आधुनिक युद्ध का दृश्य दिखाना कठिन होगा। सिनेमा के लिए सब दृश्य सुलभ है, उसमें सब चीज हस्तामलक हो सकती है, इसलिए सिनेरिया लिखने वाला अपने कथानक में दृश्य को अधिक रख सकता है। उसके लिए घटनाओं की सूचना देने की जरूरत नहीं रहती। उचित वातावरण उपस्थित करने के लिए नाटक मंडलियों को लंबा चौड़ा आडंबरपूर्ण स्टेज का सामान रखना पड़ता है। सिनेमा में यह सब झंझट बच जाती है। फिल्म बनाने वाले को ही सब सामान जुटाना पड़ता है, सिनेमा भवन वालों को कोई झंझट नहीं करनी पड़ती। सिनेमा का एक ही खेल कई स्थानों में हो सकता है। जहाँ तक प्रकाश संबंधी प्रभाव है, रंगमंच भी किसी अंश में प्रभावित होते जाते हैं। पृथ्वीराज थिएटर्स आदि में प्रकाश का अच्छा प्रभाव रहता है, किंतु उनकी भाषा में भी फारसी थिएटर के प्रभाव वर्तमान है। ये सब सुविधे होते हुए भी सिनेमा अभी वर्तमान स्थिति में रंगमंच का स्थान नहीं ले सकता। सिनेमा आखिर छाया है, वस्तु और छाया में बहुत भेद है। हम सिनेमा में यह भूल नहीं सकते कि हम छाया चित्र देख रहे हैं। नाटक भी वास्तविकता की नकल है, किंतु सिनेमा नकल की नकल है। सिनेमा के अभिनय में दिन प्रतिदिन उन्नति की संभावना नहीं रहती। जो भूल हो गई, सो हो गई, वह पत्थर की लकीर बन जाती है। इन सब बातों की अतिरिक्त सिनेमा के अभिनेताओं को दर्शकों के प्रत्यक्ष साधुवाद का प्रोत्साहन नहीं मिलता। इस कारण भी अभिनय में कुछ अंतर आ जाता है। सिनेमा में रंगीन फिल्में तो बन गई, किंतु अभी यहाँ चित्रों में आयाम का स्थूलत्व दृष्टिगोचर नहीं होता है। जब लंबाई चौड़ाई के साथ गहराई और उभार भी पूर्ण रूपेण परिमार्जित हो तब वास्तविकता का कुछ भान हो सकेगा। अब त्रियायामी चित्र भी आने लगे हैं, किंतु उनके लिए विशेष प्रकार का चित्रपटीय प्रबंध चाहिए। फिर भी वे नाटक के पात्रों की भांति हार मांस चाम के स्त्री पुरुष न बन सकेंगे। इंग्लैंड, अमेरिका आदि देशों में सिनेमा की चरम उन्नति होते हुए भी नाटक का मान है। थिएटरों में बैठने के लिए स्थान बहुत पहले से सुरक्षित करना पड़ता है, इसलिए सिनेमा के अस्तित्व से नाट्य कला का ह्रास हो जाना आवश्यक नहीं है। यद्यपि गुड़ ग्राहकों की कमी है, तथापि सच्चे गुड़ का मान हुए बिना नहीं रहता।